नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार आदाब श्रोताओं, मैं अंजलि आज खबर लेकर आई हूँ। ई कचरा पैदा करने वाले दुनिया के 5 शीर्ष देशों में भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसके अलावा इस सूची में चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी भी हैं। भारत में ई कचरे के सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। वह सिर्फ 47,810 टन कचरे को सालाना रिसाइकिल कर दोबारा प्रयोग के लायक बनाता है। ई कचरे में तमिलनाडु का योगदान 13% है और वह 52,427 टन कचरे को रिसाइकिल करता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश 86,130 टन कचरा रिसाइकिल करता है। देश के ई कचरे में पश्चिम बंगाल का 9.8%, दिल्ली का 9.5%, कर्नाटक 8.9%, गुजरात 8.8% और मध्य प्रदेश 7.6% योगदान है। ई कचरे की वैश्विक मात्रा 2016 में 4.47 करोड़ टन से बढ़कर 2021 तक 5.52 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है। ई कचरे में आमतौर पर फेंके हुए कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड, कैथोड रे ट्यूब, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मोबाइल फोन और चार्जर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन के साथ एलसीडी या प्लाज्मा टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। असुरक्षित ई कचरे को रिसाइकिल के दौरान उत्सर्जित रसायनों, प्रदूषकों के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रणाली, गुर्दे और मस्तिष्क विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा विकार, गले में सूजन, फेफड़ों का कैंसर, दिल, यकृत को नुकसान पहुंचाता है। अधिक जनसंख्या भी बढ़ते हुए ई कचरे का कारण है। कुल ई कचरा सामग्री में कंप्यूटर उपकरण लगभग 70%, दूरसंचार उपकरण 12%, विद्युत उपकरण 8%, चिकित्सा उपकरण 7% और बाकी घरेलू सामान का योगदान 4% है, जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण में अपरिवर्तनीय क्षति और उद्योग में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज मैं बात करने वाला हूं भूमि के बारे में। जी हाँ, भूमि मतलब अपनी जमीन। सुधा भारद्वाज श्रमिक अधिकारों और भूमि अधिकरण के खिलाफ लड़ने वाली एक अकेली महिला है। आज छत्तीसगढ़ राज्य में इन्हें हर कोई पहचानता है। सुधा भारद्वाज कहती हैं कि हम छत्तीसगढ़ के लिए लड़ रहे हैं। यह राज्य संसाधनों में समृद्ध है, इसमें पानी, जंगल और भूमि बहुतायत में है, लेकिन इसके लोग बहुत गरीब हैं। राज्य में असमान वृद्धि भी देखी जा रही है और हर किसी के लिए लाभ का कोई न्याय संगत वितरण नहीं है। अगर मैं हाशिए वाले समुदाय के लिए लड़ रही हूँ तो मेरे पास उन लोगों के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है जो भ्रष्ट राजनेताओं और वन विभागों से कंपनियों को उचित मजदूरी और सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में कंपनियों और सरकारों का कहना है कि वो अप्रयुक्त संसाधन विकसित करना चाहते हैं। संविधान गैर जनजातीय लोगों को सीधे देश के कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण करने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए सरकार को इसे प्राप्त करना चाहिए और कंपनियों को बेच देना चाहिए। हर दिन सुधा भारद्वाज ठेके श्रमिकों के संघ के सदस्यों से मिलती है, मजदूर वर्ग में डिवीजनों को दूर करने का प्रयास करती है, इन श्रमिकों की समस्याओं को सुनने और संकल्प की भी तलाश करती है और हर दिन असफल होने के बावजूद वह वंचित लोगों, ज्यादातर अल्पसंख्यकों, दलितों और गरीबों के मामले से लड़ने के लिए अदालतों में भी जाती है। वैसे आज हमारे समाज और देश को सुधा भारद्वाज जैसे लोगों की बहुत जरूरत है जो किसी की आवाज उठा सके।
धन्यवाद राजीव जी। और मैं आज जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है बहुराष्ट्रीय स्वीडिश ब्रांड H&M महिला उत्पीड़न का मामला। 27 सितंबर 2017 को राधिका, जो बेंगलुरु में बहुराष्ट्रीय स्वीडिश कपड़ों के ब्रांड H&M के लिए एक वस्त्र बनाने में लगी हुई थी, उन्हें उनके पर्यवेक्षक ने मारा। एक नई शोध रिपोर्ट के अनुसार H&M गारमेंट सप्लाई चेन में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है। कुछ कारखानों में महिला श्रमिकों ने इसकी शिकायत की पर उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसी तरह हरियाणा के गुरुग्राम में H&M के आपूर्तिकर्ता कारखाने में एक वृद्ध महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर कम उम्र की लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता था और वृद्ध महिलाओं के साथ अलग। एक रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी H&M आपूर्तिकर्ता कारखानों में महिलाओं के प्रति पर्यवेक्षकों द्वारा यौन शोषण और दुर्व्यवहार की भी सूचना मिली। सितंबर 2015 में खांडवा की फैक्ट्री में अचानक श्रमिकों की छटनी हुई। जांच के समय पता चला कि H&M आपूर्तिकर्ता ने 6 उत्पादन इकाइयां आयोजित की और कम आदेशों के कारण इसमें प्लांट 7 को बंद कर दिया गया और सभी श्रमिकों को निकाल दिया गया। 25 दिनों बाद इस H&M सप्लायर ने प्लांट 7 को फिर से खोल दिया और 342 श्रमिकों को किराए पर लिया। इसी तरह फरवरी और मई 2018 के बीच भारत, बांग्लादेश और कंबोडिया में भी 6 H&M आपूर्तिकर्ता कारखानों में अधिकांश महिलाएं हिंसा की शिकार थीं। इसलिए सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्तिकरण, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए एक नया तरीका ढूंढने की आवश्यकता है।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।